प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 673। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सिद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये सौवसाहुं। सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनाष्ट गाति कर्मने प्रणमन करो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वैशेष तीर्थंकर ने सिद्ध श्रुतास्तिपने मुनि ज्ञान दृगचारी प्रताप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदो क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सिद्धने नमस्करण करिए रीते गुणधर में अध्यापको में सर्वसाहु समूह में तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो सामने जे नाथ शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुमकुम भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं और उसके आठवें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 115 पर हम आगे 115 हम जयसेनाचार्य की टीका पढ़ रहे थे। 190 गाथा की 190 की जयसेनाचार्य की टीका मैं मूल हिंदी पुस्तक में से पढ़ रही हूँ, आप देखना उसमें 115 पेज पर जहाँ लिखा ना अर्थ अशुद्ध नयात, यानी गाथा का अर्थ पहले समुदाय पातनी का कहते, पहले क्या हो चुका, आने वाला विषय क्या है उसको बताया और उसके आगे अथ यानी अब अशुद्ध नयात अशुद्ध आत्मलाभ एव भवति इति उपदिशति, यानी अशुद्ध नय से, अशुद्ध नय किसको कहा याद है, शुद्ध नय किसको कहा, जो पर्याय अपने द्रव्य से होती है वो भले भिखारी भी क्यों ना हो वो उसको शुद्ध नय कहा था यहाँ पर इस गाथा में। और परद्रव्य के पर्याय जो कर्म के पर्याय है वो जीव करता है, यह क्या है अशुद्ध नय का कथन। तो ये कहते कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा का लाभ होता है ऐसा यहाँ उपदेश देते हैं। न चयदि जोदु ममतिम न त्यजति यस्तु ममताम, जो ममता को नहीं छोड़ता, ममकार अहंकार आदि समस्त विभाव रहित सकल विमल केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप निजात्म पदार्थ निश्चल अनुभूति लक्षण निश्चय नहीं, इससे जो रहित है उसको यहाँ अशुद्ध नय व्यवहार ने कह दिया। तो क्या कहते हैं, जो ममकार यानी ममत्व और अहंकार यानी एकत्व ममत्व से समस्त विभाव से रहित ऐसा जो सकल विमल केवल ज्ञान और अन्य भी अनंत गुण स्वरूप जो निज आत्म पदार्थ है उसकी निश्चल अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा जो निश्चय है उससे रहित होने से जो व्यवहार मोहित हृदय सन, यानी व्यवहार मोहित, व्यवहार यानी व्यवहार ने का जो कथन होता है उसे मोहित, उसी को सच्चा मान लेता है, उसी को मान लेता है। तो कहते ऐसे होते हुए ममताम यानी ममत्व भाव न त्यजति यह, जो ममत्व भाव नहीं छोड़ता। केन रूपेण, किस रूप से ममत्व भाव है? अहम मम इदम इदम ति, अहम मम इदम इति, यानी यह मैं हूँ ये मेरा है, इस तरह से उसका उसमें अहम भाव और ममत्व भाव है, ममत्व भाव में दोनों आ गए। केशु विशेषी, किसके बारे में यह मैं हूँ और ये मेरे है मानता है? तो कहते देह द्रविणेशु, देह द्रव्येशु, देहे देहो अहम इति, परद्रव्येशु मम इदम इति। समझ नहीं आई बात? देह में यह मैं हूँ मानता है और परद्रव्य में ये मेरे है मानता है, ये क्या है उसका ममत्व भाव। सो सामण्यम चत्ता परिवन्नो होदि उम्मगम, स श्रामण्यम त्यक्त्वा, श्रामण्य कहा यहाँ मोक्ष मार्ग को श्रामण्य कहा था, मोक्ष मार्ग को छोड़कर, पहले बात है ना दूर से ही छोड़कर, यानी वो प्राप्त ही नहीं किया है, प्राप्त हुआ और बाद में छोड़ा उसकी बात नहीं है, यहाँ पर प्राप्त ही नहीं किया उसको कहते हैं, उसको छोड़कर प्रतिपन्नो भवति उन्मार्गम, यानी उल्टा मार्ग, उत्मार्गम लिखा है यहाँ, उन्मार्ग होता है वो, यानी उन्मार्गम और प्रतिपन्न होता है ना प्राप्त होता है, उन्मार्ग को प्राप्त होता है ना खोटा मार्ग मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। स पुरुषो, वह पुरुष जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र निंदा प्रशंसादि परम माध्यस्य लक्षणम श्रामण्यम यतित्वम चारित्रम दूरात अपहाय, ये श्रामण्य को छोड़कर, तो श्रामण्य किसको कहेंगे? यतित्व को कहेंगे, चारित्र को कहेंगे, मोक्ष मार्ग को कहेंगे। तो इसको दूर से छोड़कर वो श्रामण्य बताने के लिए क्या कहते हैं, जो जीवित मरण, जीवन और मरण, आगे क्या लिखा है सब माध्यस्य लक्षण वाला श्रामण्य, जिसको जीवन में जीवित रहने में और मरण में समता भाव है, यानी माध्यस्थ लक्षण का अर्थ क्या है? समता भाव है, मध्यस्थ है, ये अच्छा है बुरा ऐसा उसमें नहीं है। किसमें किसमें? जीवित और मरण में, लाभ और अलाभ में, सुख और दुख में, शत्रु मित्र में, निंदा और प्रशंसा आदि, परम माध्यस्थ लक्षण श्रावण्यम आदि में, जिसको परम माध्यस्थ बना होता है ऐसा जो श्रमणत्व श्रामण्य है, इसी को यतित्व कहा, इसी को चारित्र कहा, उसको दूरात अपहाय, दूर से ही छोड़कर, यानी उसने कभी प्राप्त ही नहीं किया, उसको कहते दूर से ही छोड़कर तत्प्रतिपक्षभूत उन्मार्गम, उन्मार्ग का अर्थ क्या है? मिथ्या मार्गम प्रतिपन्नो भवति। तो कहते उसको दूर से ही छोड़कर, ये जो चारित्र है, यतित्व है, श्रामण्य है, उसको दूर से ही छोड़कर उसका प्रतिपक्ष भूत ऐसा जो उन्मार्ग है यानी मिथ्या मार्ग है उसको प्राप्त होता है, उसको धारण करता है। उन्मार्गाच संसार परिभ्रमति, और ये उन्मार्ग से ही संसार में परिभ्रमण करता है। ततस्थितम, इससे क्या नक्की हो गया? अशुद्ध नयाद अशुद्धात्म लाभ एव, अशुद्ध नय से अशुद्धात्मा का लाभ होता है, उसी का लाभ होता है। अब हम गुरुदेव श्रामण्य ने मुनि नहीं पढ़ना, हमने पहले पढ़ा था अमृतचंद्राचार्य ने मोक्ष मार्ग कहा था उसको, देखो ना इसमें संस्कृत में होगा हम देख लेते हैं, अमृतचंद्राचार्य की टीका जरा देख लेना 190 की, परद्रव्य मत न जाते सकल शुद्धम प्रीणते सामान्य आख्यम मार्गम, श्रामण्याखम मार्गम दूरा तपाए, श्रामण्य जिसे कहा है ऐसा मार्ग। श्रामण्याख्यम का अर्थ क्या है हिंदी में क्या लिखा था उन्होंने? श्रामण्य नामक मार्ग को आख्या मैंने उसको बताया है, उसका नाम है श्रामण्य नाम के मार्ग से, मार्ग को दूर से छोड़कर। अभी हम प्रवचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 117 पर है। हाँ, नया प्रवचन, प्रवचन नंबर 186 है उनका। प्रवचन सार 189 गाथा थी गई, अभी गुजराती में बोल रहे हैं, अभी 190 गाथा आगे तो उन्होंने हिंदी बोल लिया है। अब ऐसा कहते हैं कि अशुद्धन ऐसे अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है, क्या कहते हैं स्पष्टीकरण करेंगे। अभी हमने तो गाथाएं पढ़ी थी, नीचे टीका वहां पढ़ते हैं, यानी टीका पर गुरुदेव बोल रहे हैं। जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप, शुद्ध द्रव्य चैतन्य भगवान का जो कथन किया, ऐसे निश्चय नैसे निरपेक्ष अपना आत्मा शुद्ध पर से बिल्कुल भिन्न, कुरस्व करना बिल्कुल, ऐसे शुद्ध भाव शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा निरपेक्ष रहकर, अर्थात उसका लक्ष्य छोड़कर,
बिल्कुल का कुरस्व
रस्व रस्व शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा उसकी उपेक्षा करके, परद्रव्य मेरा है ऐसी मान्यता करता है। सूक्ष्म बात है, निरपेक्ष होना है, उसकी अपेक्षा नहीं तो परद्रव्य में ही वो तो उसी में लीन है, है ना? आत्मा शुद्ध चैतन्य घन की उपेक्षा करता है, दृष्टि में उसे लेता नहीं, उसको कहा उससे निरपेक्ष रहता है। और परवस्तु मेरी है उसकी अपेक्षा करता है, उसकी अपेक्षा करता है। क्या सूक्ष्म बात है भाई, जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के कथन को यानी भाव निश्चय नय से निरपेक्ष, मूल ग्रंथ में फुट नोट है, निश्चय नय से निरपेक्ष का अर्थ क्या है? निश्चय नय के प्रति उपेक्षावान, उसे न गिनने मानने वाला भगवान आत्मा कर्म शरीर लक्ष्मी स्त्री कुटुंब परिवार मकान वस्त्र से बिल्कुल भिन्न चीज है। वो कुरस्व करना, इस भिन्न चीज की उपेक्षा छोड़कर उसकी अपेक्षा, उपेक्षा छोड़कर अर्थात वह भिन्न है उसकी खबर नहीं। प्रश्न पूछते हैं राग से भिन्न नहीं, उसका समाधान यहाँ तो राग से भिन्न लेना है, यहाँ तो यह लेना है, यहाँ तो पर की ममता का त्याग कराते हैं, तब पर की ममता जो राग है उसका भी त्याग कराते हैं। समझ में बात, ममत्व भाव का त्याग है ना, पर की ओर की जो ममत्व भाव है उसके प्रति जो राग है उसी के त्याग की बात करें। अपने सिवा जो परद्रव्य है, कर्म शरीर स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी आबरू का लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य कैसा, यह मेरा है ऐसा मानता है। वह तो स्वरूप से भ्रष्ट है, तो पर का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करता है, वहां राग नहीं आता क्योंकि स्व का लक्ष्य किया है। लक्ष्य करते हैं तो द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आता है। समझ में आया? क्या कहा, अपनी ओर लक्ष्य किया तो द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ गया, वो आता है ना। नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो, ये कहाँ लिखा है आशा भी नहीं याद है, समय सर की छठी गाथा है। 6 नंबर की। पर का लक्ष्य छोड़कर कर्म शरीर लक्ष्मी सर्व अपने स्वद्रव्य के अलावा सब द्रव्य, अरे देव गुरु शास्त्र भी परद्रव्य है, उसका लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करता है। बीच में राग हो लेकिन परपदार्थ का लक्ष्य छोड़कर यहाँ द्रव्य पर लक्ष्य आया तो राग भी छूट गया। उसको छोड़ने की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अरविंद पूछते विकल्प कैसे छोड़ना अपना लक्ष्य करेंगे तो उत्पन्न नहीं होगा, वो तो छूट गया कहेंगे उसको। थोड़ी सूक्ष्म बात है भाई, यह तो तात्विक बात है। मुमुक्षु पूछते हैं परद्रव्यति भिन्नपने उपासवामा आउतो, ऐसा शास्त्र का वचन है तो उन्होंने यहाँ याद किया उसको। पूज्य प्रदेश कहते हाँ उपासवामा आउतो भिन्नपने उपासवामा आउतो, वह कहना था भाई क्या कहा कि परद्रव्य से भिन्न उपासने में आता आत्मा, उसका अर्थ यह कि अपने अलावा जितने परद्रव्य है उनसे भिन्न उपासने में आया। उपासना करना है कि कुछ अष्टद्रव्य लेके पूजा नहीं करनी है उसकी, उसका लक्ष्य करना है उसी में एकाग्र होना है, यानी कि अंतर एकाग्रता थी तो यहाँ बाहर से छूटकर या अंदर आए द्रव्य में आया। बीच में राग को छोड़ना यह नहीं आया, वह तो राग छूट गया, समझ में आया। लोगों को चिंता है ना कैसे छोड़ना। भिन्नपने उपासने में आया उसे यह कहना था भाई, समय सार की छठी गाता है ना, अपना स्वरूप भगवान ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप परद्रव्य की उपासना छोड़कर, हम रात दिन क्या कर रहे हैं, परद्रव्य की उपासना कर रहे हैं। लक्ष्य जो है उसे छोड़कर जब परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो स्वद्रव्य में लक्ष्य आता है। तो बीच में राग भी भिन्न हो गया, समझ में आया, क्योंकि परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ा तो परद्रव्य का लक्ष्य करता, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ा अभी राग भी कहाँ है, क्योंकि स्वद्रव्य के लक्ष्य से राग नहीं होता है तो छूट गया वो। फिर से देखो, जब परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो स्वद्रव्य में लक्ष्य आता है, तो बीच में राग भी भिन्न हो गया, समझ में आया। पर का लक्ष्य छोड़कर यहाँ द्रव्य का लक्ष्य किया तो द्रव्य का लक्ष्य करने में राग भी भिन्न हो गया। जिसे परद्रव्य का भिन्नता जान ला वैसे राग की भिन्नता भी ख्याल में आ गई। क्या कहा समझ में आया, भाई ने प्रश्न किया था 189 गाथा में, 189 गुजराती में, हाँ हिंदी में 89 कहते ना, हाँ तो राग अपना है ऐसा कहा, वहां तो उसको शुद्ध द्रव्य का कथन कहा था। राग अपने पर्याय में है, वह राग कोई पर में नहीं, राग अपने में हो तो उससे भिन्न की बात करते हैं कि पर से भिन्न की बात करते हैं, लेकिन पर से भिन्न की बात करने में अपना स्वभाव परद्रव्य की उपासना नाम सेवा थी उससे भिन्न हुआ तो पर में लक्ष्य था, वो अपने स्वभाव द्रव्य स्वभाव पर लक्ष्य गया। क्या कहा, पर में लक्ष्य था पहले, अभी अपने द्रव्य पर लक्ष्य गया, स्वद्रव्य पर स्वभाव पर, तो राग भी उससे भिन्न हो गया। समझ में आया, सूक्ष्म बात है भाई, धर्म की बात सूक्ष्म बात है, प्रभु ऐसा मार्ग है। प्रश्नकार पूछते हैं परद्रव्य को छोड़े या राग को छोड़े, तो परद्रव्य का कब पकड़ा था तो छोड़ना है उसको देखो समाधान, पर से भिन्न, राग से नहीं, पर से भिन्न करता है और द्रव्य पर लक्ष्य गया तो राग से भिन्न हो गया। पहले पर से भिन्नता जाननी है, तो पर से भिन्न करता है और स्वद्रव्य पर लक्ष्य जाता है तो राग से भिन्न हो गया, समझ में आया। ये तो कहा अपने द्रव्य के अलावा परद्रव्य का लक्ष्य छूटा और उसकी उपासना छूट गई तो स्वद्रव्य पर लक्ष्य आया, तो बीच में राग को भिन्न करना नहीं पड़ा। स्वद्रव्य पर लक्ष्य आया तो राग भिन्न हो गया। क्या कहा, समझ में आया? सूक्ष्म बात है बापू, भगवान तेरी जात ऐसी है। आहा हा, अंतर स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण अनाकुल, ये अनाकुल वाला कुरसो चाहिए ना, अकुलता वाला कुरसो होता है। 190 क्या कहते हैं, फिर से पढ़ती हूँ। अंतर स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण अनाकुल आनंद का कंद परद्रव्य के लक्ष्य में अनादि से रुका है, परद्रव्य की ममता से रुका है। परद्रव्य से रुका है उसका अर्थ परद्रव्य की ममता से रुका है, परद्रव्य ने रुकाया नहीं है उसको, स्वयं उसकी ममता करता है, स्वयं वहाँ रुका है। पर मेरा है ऐसी दृष्टि छूटी तो पर का लक्ष्य छोड़कर अपना द्रव्य पूर्ण स्वरूप है वहाँ लक्ष्य जाता है। क्या पर मेरा है या मैं हूँ ऐसी उसकी दृष्टि छूट गई तो लक्ष्य कहाँ गया, अपने पूर्ण स्वरूप द्रव्य पर। तो पर का लक्ष्य छूटे तो राग ऊपर लक्ष्य जाता है ऐसा नहीं, समझ में आया? वो भी भिन्न पड़ जाता है। कहते
ये छोटे में छूर दीर्घ बराबर
दीर्घ दीर्घ पर्याय बुद्धि में पर का लक्ष्य है। पर्याय बुद्धि ने पर्याय जितना मैं हूँ, अब यहाँ पर्याय बुद्धि ने कौन सी पर्याय लेनी है, ज्ञान की के दर्शन की? हाँ बोलो, हाँ सुशील, हाँ 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 बोलो, कौन सी पर्याय? हाँ बोलो बोलो सुशीला बहन, क्या कहते हैं? हाँ तो कौन सी पर्याय लेनी? उन्होंने कहा इसलिए कौन सी द्रव्य पर्याय बोलो। अभी नहीं मदद करेंगे वो। अरे ये मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ये शरीर रूप अपने को मान रहा है ना, उसको पर्याय बुद्धि कहेंगे। हाँ पर्याय जितना अपने को मानता है उसमें भी वो सब आ गया कि राग जितना मानेगा या जो सूक्ष्म ज्ञान है उतना मानता है, वो सब उसके अंदर आ गया। तो यहाँ क्या कहते हैं, पर्याय बुद्धि में पर का लक्ष्य है, अर्थात परद्रव्य मेरा है, शरीर में हूँ, यही बात ना, यानी शरीर वाणी ये जो कुछ बाकी जो परद्रव्य की अवस्था है वो मैं हूँ और मेरी ऐसा मानता है, यानी मैं मनुष्य हूँ, ये शरीर ये ही मैं हूँ और ये मैं बोलता हूँ, अच्छा समझाता हूँ, अच्छा गाता हूँ, ये क्या है, पर्याय बुद्धि सब आ गए। फिर से देखो, पर्याय बुद्धि में पर का लक्ष्य है, अर्थात परद्रव्य मेरा है, शरीर मैं हूँ, वाणी मैं हूँ, मन हूँ, कर्म हूँ, लक्ष्मी हूँ, हाथ की क्रिया होती है वो सब मेरी है, मकान आबरू पर की सेवा करता था अथवा पर मेरा ऐसा मानता था, दो पर मेरा नहीं ऐसा जब जाना तो पर से लक्ष्य छूटा। यहाँ तक समझ में आई बात? पहले पर मैं ही मानता हूँ तो उसी का लक्ष्य करता था, अब वह नक्की किया उसने, क्या किया, पर मेरा नहीं ऐसा जब जाना तो पर का लक्ष्य छूट गया। तो लक्ष्य राग पर आया ऐसा नहीं, समझ में आता, समझ में आई ना बात? कोई किसी को ऐसा लगा रहे परद्रव्य का लक्ष्य छूट, अपन अभी राग का लक्ष्य कर रहे हैं ना, तो नहीं वो भी छूट जाता, क्योंकि स्वद्रव्य के लक्ष्य से राग नहीं होता है। क्या कहे थे, समझ में आता है थोड़ा भाई? पर का लक्ष्य छूटा तो राग पर लक्ष्य आया ऐसा नहीं, पर का लक्ष्य छूटा तो द्रव्य पर लक्ष्य आया। समझ में, राग उसके पर्याय में है ये तो यहाँ सिद्ध किया, परंतु परद्रव्य की ममता जब छूटती है तब उसका लक्ष्य जाकर आत्मा ज्ञायक पर जाता है। देखो 189 में क्या राग पर्याय में है ये तो सिद्ध किया था। अब क्या कहते हैं कि परद्रव्य की ममता छूटी है, परद्रव्य मैं हूं मेरी है ऐसे उसको जाना, उससे नक्की किया तो उसका लक्ष्य जाकर आत्मा ज्ञायक पर जाता है, ज्ञायक आत्मा पर उसका लक्ष्य जाता है। परद्रव्य की ममता छूटती है तो राग पर लक्ष्य आता है ऐसा नहीं, ये ममता इटसेल्फ राग में बात थी ना उस, ऐसा मार्ग सूक्ष्म बहुत प्रभु आहा। परद्रव्य पर लक्ष्य था वह लक्ष्य छूटा, गुलाट खाया, गुलाट समझते ना, उलट गया, पलटी खाई उसने। जो परमे मेरा मानता था वह गुलाट खाकर मैं गया एक द्रव्य हूँ ऐसा लक्ष्य हुआ तो राग से भी लक्ष्य छूट गया। पहले मेरे से राग होता है नक्की किया था, पहले हो गई थी 189 में क्या राग मेरी पर्याय में है ऐसा ज्ञानी नक्की किया था। अब परद्रव्य मेरा नहीं है वो मैं हूँ नहीं हूँ तो उसका लक्ष्य छूटा तो कहाँ गया, ज्ञायक पर लक्ष्य, राग पर नहीं गया, ज्ञायक पर लक्ष्य गया। तो कहते कि ज्ञायक पर लक्ष्य गया तो राग का लक्ष्य था ऐसा नहीं, राग का लक्ष्य वो ऐसा नहीं होता है, राग का भी लक्ष्य नहीं होता है। परद्रव्य का लक्ष्य छूटा का स्वद्रव्य पर जाता है, ज्ञायक पर लक्ष्य चला जाता है तो राग से भी भिन्नता उसको ख्याल में आ जाती है। ऐसा मार्ग सूक्ष्म बहुत प्रभु आहा। देखो ये नए पैराग्राफ में लिखा है ना वो फिर मैं पढ़ती हूँ। परद्रव्य पर लक्ष्य था वह लक्ष्य छूटा, गुलाट खाया, जो परमे मेरा मानता था वह गुलाट खाकर मैं ज्ञायक द्रव्य हूँ ऐसा लक्ष्य हुआ तो राग से भी लक्ष्य छूट गया। समझ में आया, बीच में राग था उसके पर्याय में था लेकिन पर का लक्ष्य छोड़कर जहाँ स्व का लक्ष्य किया तो पर से भी छूटा और राग से भी छूट गया।
यहाँ पर हर जगह लक्ष्य लक्ष्य की है।
हाँ लक्ष्य
लक्ष्य चाहिए ना।
हाँ लक्ष्य चाहिए बराबर,
चार पांच जगह है।
हाँ बहुत बार आया है, हर जगह वही आया है, लक्ष्य नहीं एम जिसको हम निशाना यह नहीं चाहिए, मगर बहुत बार आया है ऊपर लिख के रखो। 118 पेज से चालू हो गया वो,
पांच बार आया
ज्यादा है
नहीं पहले है
118 देखो पेज नंबर 117 पर है। टीका की तीसरी लाइन लक्ष्य छोड़कर फिर 118 पेज पर वो प्रश्न के बाद समाधान के दूसरा पैराग्राफ तीसरी लाइन लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करता है दो बार, तीन लक्ष्य करते है तीन बार।
उसके नीचे का पैराग्राफ तीसरी लाइन
तीन बार। हाँ अभी उसके नीचे भी बहुत बार आया है, हर बार है। हाँ सब सब जगह ऊपर एक पेज के ऊपर लिख लो लक्ष्य के बदले लक्ष्य। ठीक है यानी हर वाक्य में लक्ष्य 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 तो है ही। अभी हम आए हैं यहाँ पर 120 पर है ना। ये नया पैराग्राफ दूसरा, केवली परमात्मा जिनेश्वर देव उनकी दिव्य ध्वनि यह प्रवचन सार है। आहा तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ प्रभु महाविदय में विराजते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि यह प्रवचन सार है। दिव्य ध्वनि यानी उत्कृष्ट आवाज ओमकार, इसका सार यह प्रवचन सार है। आहा ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, तीन लोक के नाथ की ध्वनि ओम निकलती है, निरस्व करना। निकलती वाला वो ब्रैकेट में है ना, उनको ऐसी भाषा नहीं होती। हाँ,
निरस्व
रस्व। सर्वज्ञ परमात्मा अरहंत हुए, उनको ऐसी भाषा नहीं होती। कंठ हिलता नहीं, ओठ हिले नहीं, अंतर सारा आत्मा के प्रदेश में से ओम ध्वनि उठती है। ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, भगवान की ओमकार ध्वनि सुनी गणधर सा ने संत गुण को धारण करने वाले ऐसे गणधर उसका अर्थ विचारे। दिव्य ध्वनि में आया सूत्र उसका अर्थ विचारे, रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। आहा, यहाँ कहते हैं जो आत्मा शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय से निरपेक्ष होकर त्रिकाली ज्ञायक भाव की अपेक्षा छोड़कर, अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय से, यहाँ तो अशुद्ध नय यानी परद्रव्य, परद्रव्य अपना है, व्यवहार नय आया था ना, परद्रव्य जो है वह अपना है ही नहीं, परंतु उसका निरूपण यानी वो मेरा कर्म शरीर, ये उसका निरूपण स्वरूप है व्यवहार नहीं। तो कहते अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नहीं से जिससे मोह उत्पन्न हुआ है, भ्रमणा हो गई है, ममत्व भाव आया ना उसमें, परद्रव्य मेरा है ऐसे व्यवहार नहीं से जिससे मोह मिथ्यात तो उत्पन्न हुआ, ऐसा वर्तता हुआ है, यह कथा नहीं है, यह थोड़े शब्द में खत्म नहीं होता, ऐसा गंभीर है। आहा, संतों की वाणी भगवान की वाणी है। पहले में पहला कर्तव्य वह है कि जो परद्रव्य है उसे अशुद्ध कहा ना भाई, परद्रव्य को अशुद्ध कहा और स्वद्रव्य को शुद्ध कहा, भले राग पर्याय हो लेकिन परद्रव्य की ममता जब है तब राग भी मेरा है ऐसा आ गया, समझ में आया। लेकिन पर की ममता जब छूटती है तो लक्ष्य वो लक्ष्य कर देना, द्रव्य पर जाता है तो राग से भी छूट गया, यानी राग से भी उसका लक्ष्य छूट गया, वो भी भिन्नता में आ गया उसके। पर की ममता छोड़नी है और राग का त्याग करना है, समझ में आया। परवस्तु उसमें है ही नहीं, आत्मा की पर्याय में परवस्तु तो है ही नहीं, पर्याय जो है द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, द्रव्य गुण तो त्रिकाल पवित्र आनंद कंद है, लेकिन उसकी वर्तमान दशा है, अवस्था है, उसमें कर्म शरीर वाणी परद्रव्य तो है नहीं, परद्रव्य पर्याय में है नहीं, यानी परद्रव्य अपने पर्याय में नहीं है, भले पर्याय में राग है लेकिन परद्रव्य पर्याय में नहीं है, समझ में आ रही, अपने पर्याय में परद्रव्य नहीं है, ये जो कर्म है वो अपने पर्याय में नहीं है। सूक्ष्म बात है प्रभु, वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। हाँ, यहाँ परद्रव्य की ममता छोड़ने को कहा ना, न चैती जो दू ममतिम, ऐसा है ना, उसकी ममता छोड़नी है, वह तो भिन्न ही है, पर चीज तो भिन्न ही है लेकिन उसकी ममता छोड़ता नहीं, करना क्या था, उसकी ममता छोड़नी है। लक्ष्मी मेरी, पैसा मेरा, देह मेरा, वाणी मेरी, आहा, वाणी तो जड़ है, वाणी जो आवाज उठता है वह मिट्टी धूल है, आहा, यह शरीर जड़ है, यह मन है जो विकार में निमित्त होता है, आठ पंखुरी वाला अनंत परमाणु का पिंड है वह भी जड़ है, आहा, जिसे जड़ की ममता छूटती नहीं उसने शुद्ध द्रव्य की उपेक्षा की है। क्या कहा, जिसे जड़ की ममता छूटती नहीं उसने शुद्ध द्रव्य की उपेक्षा की है। भगवान पूर्णानंद का नाथ की उपेक्षा करके उसका अनादर करके, भगवान पूर्णानंद प्रभु है उसका अनादर करके, हाँ हाँ, और पर की ममता करके, पर मेरा ऐसा आदर करके निज भगवान का अनादर किया है, आहा हा, वाणी सूक्ष्म है भाई, यह प्रवचन सार है। व्यवहार ने से जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा ना, ममता है ना, परद्रव्य में मोह किया है, परद्रव्य उसके पर्याय में है ही नहीं, उसके पर्याय में क्या है, मोह ममत्व, समझ में आया, मोह उत्पन्न हुआ है, आहा हा। भगवान आत्मा स्वद्रव्य पूर्णानंद के नाथ का आश्रय नहीं तो पर में ममता मोह उत्पन्न हुआ है, अपना अस्तित्व अपने में है ऐसा दृष्टि नहीं तो अपना अस्तित्व कहीं है ऐसा तो मानना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अपने अस्तित्व पर दृष्टि नहीं की, अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो अपना अस्तित्व मानेगा, देखो क्या कहते, अपना अस्तित्व अपने में है ऐसा दृष्टि नहीं तो अपना अस्तित्व कहीं है, कहीं यानी कहीं तो है ना, ऐसा तो मानना पड़ेगा ना, तो परद्रव्य में हूँ और परद्रव्य मेरा है ऐसा पर में अपना अस्तित्व अज्ञानी मानता है, देखो क्या कहते हैं, अपना अस्तित्व यानी मेरी अस्थि है मैं हूँ ऐसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता, सब जानते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जानता है, जानता है मैं हूँ अपनी अस्थि है, अरे एकेंद्रिय को भी अपनी अस्थि की खबर है, भूल कहाँ हो रही, मैं कौन हूँ उसमें भूल हो रही है, तो जो मैं हूँ असली मैं हूँ अपने द्रव्य में उसने अस्थि मैं हूँ ऐसा नहीं नक्की किया, ऐसा नहीं माना है तो कहीं ना कहीं तो उसको अस्थि मानेगा ही अपने, क्योंकि मैं हूँ इसका हिस्सा तो सब जीव जाति को है, पूर्ण जीवों को है, तो कहीं ना कहीं तो उसने मान लिया यह मैं हूँ करके, ये बता रहे, देखो फिर से, नीचे से चौथी लाइन, अपना अस्तित्व अपने में है ऐसी दृष्टि नहीं तो अपना अस्तित्व कहीं है ऐसा तो मानना पड़ेगा ना, आहा हा, तो परद्रव्य में हूँ और परद्रव्य मेरा है ऐसा पर में अपना अस्तित्व अज्ञानी मानता है, सूक्ष्म बहुत है भाई, इच्छा में परिक्रमणा किया कर लिया तो सामायिक हो गई, अरे प्रभु नमो अरिहंताणम इच्छामि परिक्रमण तस्सुत्तरी लोगस नमोत्थुणम, ये तस्सुत्तरी है कि तस्सुत्तरी है, सुर रस्व चाहिए और डबल तो चाहिए, तस्सुत्तरी रस्व सु और डबल तो तस्सुत्तरी, हाँ डबल तो तस्सुत्तरी लोगस और नमोत्थुणम मथु रस्व बोला और दो घड़ी बैठे तो माना कि हो गई सामायिक, धूल में भी सामायिक नहीं है बापू, सामायिक किसे कहना इसकी तुझे खबर नहीं, आहा हा, जिसने आत्मा पूर्णानंद के नाथ की अपेक्षा छोड़कर जो स्वद्रव्य अपना स्वतः है उसकी अपेक्षा छोड़ी, अपेक्षा छोड़ी उसकी उपेक्षा कर दी, उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो कहते जिसने आत्मा पूर्णानंद के नाथ की अपेक्षा छोड़ दी, जो स्वद्रव्य अपना स्वतः है उसकी अपेक्षा छोड़ी, उसका अनादर करके, और जो चीज़ अपने पर्याय में नहीं है और भिन्न है उसका जो मोह उत्पन्न करता है वह मिथ्या दृष्टि है, मोह ने यह ममत्व, यह मैं हूँ ये मेरी है, समझ में आया, ऐसा वर्तता हुआ, देखो परद्रव्य में वर्तता हुआ नहीं, परद्रव्य में मोह वर्तता हुआ ऐसा कहा है, जीव परद्रव्य में वर्तता ऐसा नहीं कहा, क्या वर्त रहा है, मोह, परद्रव्य में ममत्व भाव वर्त रहा है उसका, मोह उत्पन्न हुआ ऐसा वर्तता हुआ, यानी जिसे मोह हुआ है ऐसा जो है ऐसा तो वर्तता है, मैं यह हूँ यहाँ ज्ञायक भाव त्रिकाल है वह मैं हूँ ऐसी तो दृष्टि है नहीं, तो कहीं अपना अस्तित्व है ऐसा मानना पड़ेगा। तो जो चीज दिखने में आती है उसमें अस्तित्व मानता है, यानी जो चीज दिखने में भी एक इंद्रियों को कहाँ दिखता है, तो जो पांच इंद्रियों के द्वारा जहाँ एहसास होता है, अभी स्पर्शन संबंधी ज्ञान भी तो हो रहा है और मैं हूँ ऐसा एहसास भी हो रहा है उसको, तो उसी में उसको एकत्वपना बना है। हम जैसे भाषा में बोलते हैं ऐसा तो वहाँ नहीं है, परंतु वो तो मिथ्या भाव वहाँ है कि नहीं है, मोह है ना कि एक इंद्रिय इसलिए मोह नहीं है। क्या कहते हैं, तो जो चीज दिखने में आती उसमें अस्तित्व मानता है, कहते अनादि से मैं हूं ये बात ये जीव जानता है, हर जीव मानता है, और उसने इंद्रियों के द्वारा अपने को जानने की कोशिश की, तो इंद्रियों के द्वारा क्या दिखा, शरीर, और यहीं पर मैं हूं ऐसे उसी आत्म प्रदेश वहीं पर है और मैं हूं ऐसी वहां पर प्रतीति भी हो रही है, तो किसको मानता है मैं हूं, ये जो दिख रहा है उसी को मैं हूं मानता है, ये कह रहे। स्वयं नित्य है तो वस्तु को कायम रखने की भावना करता है, क्योंकि नित्य हो जाए, मैं नित्य हूं ऐसा नहीं, यह नित्य हो जाए, क्या कहते हैं, ये तो मैं नित्य हूं, परंतु ये जो जिसको मैं मान लिया ना, किसको, शरीर को, देखो तो वो नित्य हो जाए ऐसा चाहता है, मैं नित्य हूं ऐसा नहीं कहते, शरीर मैं हूं और वो नित्य होना चाहिए, जो नित्य हो जाए ऐसी इच्छा करता रहता है। बहुत गुरुदेव ने तो गजब की कहा बताया है, देखो फिर से, स्वयं नित्य है बराबर, तो वस्तु को कायम रखने की भावना करता है, क्योंकि नित्य हो जाए, मैं नित्य हूं ऐसा नहीं, यह नित्य हो जाए, इसलिए तो डर लगता है शरीर में कोई रोग आता है, कोई अभी देह छूटने का प्रसंग आता है तो जिसको कहते हैं बहुत कोशिश करता है ये नहीं छूटे करके, तो यह नित्य हो जाए ऐसी सोचते हैं, शरीर कायम रखूं, वाणी कायम बोले, निरोगता कायम रहे, लक्ष्मी का संयोग हमेशा रहे, मृत्यु पर्यंत अनुकूलता रहे, उसकी नित्यता कल्पता है कहते हैं, कल्पना करता है, यह स्वरूप नित्य है उसकी दृष्टि नहीं करता, ऐसी बातें है भाई।
हमको सुबह से शाम तक बहुत लोगों के फोन आते हैं, पहला प्रश्न, आप धोनी की तबीयत कैसी
है, ऐसा वर्तता हुआ, नीचे का पड़ेगा, मैं यह हूं, न्याय भाव जो है उसकी उपेक्षा कर दी और यह शरीर वाणी मन धन लक्ष्मी मैं हूँ ऐसी अपेक्षा की। आहा, कहते हैं ना स्त्री को अर्धांगना कहते हैं, अर्धांगना मैं और तू दोनों मिलकर एक है, अर्धांगना यानी अंग का अर्ध अंग ये है, भगवान तुझे क्या हुआ, तेरा आधा अंग और उसका अर्धा अंग दोनों एक अंग हुए, अर्धांगना है। आहा हा, और कभी सगे संबंधी में किसी का देह छूट गया हो तो लड़के को भेजे और कहे तू जा, तू है वह मैं ही हूं ना, ऐसा कहते कि नहीं, तू है वही मैं हूं, ये सब बनिए का व्यापार। हा हा हा, प्रभु ये तूने क्या किया, ये लौकिक में क्या चलता है सब पता था गुरुदेव को। प्रश्नकार पूछता है पुत्र को अपना नहीं मानना ऐसा, समाधान, पुत्र को अपना नहीं मानना ऐसा यहाँ कहते हैं, प्रश्न पूछते तो दुनिया में रहना कैसे, समाधान, आत्मा नहीं है अंदर, वस्तु नहीं है, कौन लड़का लड़की, कौन बाप, अरे प्रभु उसका आत्मा भिन्न, उसका शरीर भिन्न, यानी उसके शरीर से उसका आत्मा भी भिन्न है, वह भिन्न चीज तेरी कहाँ से हो गई। मुझे कैलाश संजीव विद्वान शहर वालों की याद आती है, वो क्लास में जाते थे ना, कोई नहीं आया तो पूछते क्यों नहीं आया, क्योंकि देखा जरा सा काम था। अरे जरा से काम के लिए तूने जिनवानी को ठुकरा दिया और किसी को पूछा तू क्यों नहीं आया, मैं बीमार था। तू बीमार था? नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर बीमार था, तेरे बाप का शरीर, ऐसा कहते थे। जिसको कहते डंडे पड़ते थे तो भी ख्याल आता था बराबर।
पवन जी के फादर,
पवन जी के फादर, उन्होंने हमको सिखाया। वो 76 में आए थे यहाँ पर, अष्टानिका में आए थे और दिवाली के बाद
पर्यूषण में आए थे
और दिवाली के बाद वाला अष्टानिका करके फिर गए। ढाई महीने तो थे यहाँ पर, रोज के 3 घंटे सिखाते दादर मंदिर में, सुबह दोपहर और शाम को। हाँ, कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, और हमारे घर के सब लोग जाते थे हम, और वो हमको डेली होमवर्क देते थे लिखने के लिए, सारे प्रश्न एक वो निमित्त उपादान के, उनको 16-16 प्रश्न होते थे, पुस्तकें थी ना उनकी, तो वैसा ही दूसरे उदाहरण पर हमको लिखने को बोलते थे, वो सब रोज के रोज लिखने को बोलते थे हमको, तो रात के 2 बज जाते थे लिखने के लिए। क्योंकि घर का काम, डिस्पेंसरी, फिर उनके 3 बार प्रवचन, और हमारा घर सब जॉइंट फैमिली थी ना, 18-20 लोग तो रोज का हमारा। क्या मंदिर में ही करते थे? वहाँ अलग कुछ नहीं था, गुरुदेव थे और तभी
था। एक बार तो क्या करेंगे, पर पची बारे
मंदिर में नहीं हुआ, मंदिर के सामने, वो तो क्या है मंदिर में हो भी नहीं सकता था, इसलिए नहीं हो सकता था कि जगह छोटी थी ना, उसके लिए तो बड़ा हॉल की जरूरत थी। ये पीछे जो बढ़ाया है वो अभी भी बढ़ाया है, मंदिर में केवल वो मंदिर का जो सामने वाला है उतना ही था, स्पेस थी ही नहीं ज़्यादा बैठने के लिए।
एक्चुअली जिंदगी में हमारे वो पहले पंडित है जो हमारे घर में स्वयं बोले कि हमको आपके घर में खाना खाने को आने का, और हम तो जानते हैं तो पंडितों को खाना खिलाना क्या अपने बस की बात नहीं।
नहीं, वो किसी के घर में मिष्ठान नहीं खाते थे, सामने से बोला मैं आपके घर में आऊँगा और आप मुझे वो थुली बनाना, थुली नहीं वो तो वो जाड़े रवाई का होता है ना, सिरा जैसा बनाते वैसा। और उनकी खासियत थी कोई उनको परोसे नहीं, सब रख दो सामने, वो स्वयं हाथ से लेते थे। हाँ आए थे, हमने बोला मैं चाय लाती हूँ तुम क्या लाओगी, वो हाँ बाद में उनकी मेमोरी चली गई, तभी तो पहचाना था उन्होंने अच्छी तरह से। मगर जब हम 2008 में गए थे उनके यहाँ, दशरक्षण में गए थे, पवन जी ने बुलाया था मंगलायतन में, 10 दिन वहाँ बच्चों को भी पढ़ाते हम दोनों मिलकर, 6-6 घंटे पढ़ाते थे, तब नहीं पहचाना उन्होंने, क्योंकि वो बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे उनके।
उनको खाना बनाए, क्या क्या बनाए सामने रखो, तुम दूर जाओ, स्वयं हाथ से लिया, दूसरे टाइम नहीं लेंगे, एक एक ही टाइम।
और बिल्कुल निष्प्रो, किसी से कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं,
आने जाने का खर्चा भी नहीं लेते,
टिकट भी स्वयं के निकाल के लाते थे, तभी तो ऐसे ये टिकट मिलती थी ना रेलवे की। देखो प्रश्न किसका है, नहीं नहीं ऊपर ऊपर समाधान, आत्मा नहीं अंदर, वस्तु नहीं है, कौन लड़का लड़की, कौन बाप, अरे प्रभु, उसका आत्मा भिन्न, उसका शरीर भिन्न, वह भिन्न चीज तेरी कहाँ से हो गई, आहा हा, यह मेरी लड़की है, श्रीमत तो ऐसे बोलते, श्रीमत मारी नहीं। हाँ, जब कुछ कहना हो तो ऐसा बोलते हैं कि अमारो कोट लावजो, अमारो कोट लावजो, अमारो एटले मारो नहीं एवो कोट, हाँ अमारी दीकरी छे, आ अमारो दीकरो छे, અમારો એટલે મારો નથી એમ, અમારો આવે છે ને ભાઈ, વો તો હિન્દી મેં હમારા કહેતે, ગુજરાતી મેં તો અમારા હે ભાઈ, આ અમારો દીકરો છે, હિન્દીમાં શું આવે છે, હમારા હૈ, હમારા પુત્ર હૈ, હમારા પુત્ર હૈ, એને કે અ નહીં, મેરા પુત્ર નહીં હે, પ્રશ્નકાર પૂછતે કિસકા હૈ, સમાધાન પુત્ર પુત્ર કા હૈ, આહા યહાં તો દેહ ધન દો નામ દિયે હૈ, હૈ યહ મૈં હું ઓર યહ મેરા હૈ, યહ શરીર મૈં હું ઓર શરીર મેરા હૈ, યહ શરીર મૈં હું ઓર શરીર મેરા હૈ, યહ મૈં હું ઓર યહ મેરા હૈ, ઇસ પ્રકાર આત્મીયતા સે, આત્મીયતા સે અર્થાત નિજ રૂપ સે, એને યહ મૈં હું એસા આત્મીયતા ઉસમે મૈંપના, અજ્ઞાની જીવ શરીર ધન ઇત્યાદિ પરદ્રવ્ય કો અપના માનકર ઉસમે મમત્વ કરતા હૈ, આત્મીયતા સે અપના હૈ એસા દેહ ધનાદિક, યહ શરીર તો મિટ્ટી પુદગલ હૈ, જડ હૈ, યહ તો અજીવ તત્વ હૈ, જીવ તત્વ મેં કહાં સે આ ગયા, ઓર ધન તો દૂર હૈ, દૂર હૈ ને અત્યંત ભિન્ન હૈ, યહ શરીર તો નજદીક વાલા હૈ, યહ તો શરીર ફિર ભી સમીપ હૈ, સમીપ મેં હૈ, લક્ષ્મી પુત્ર પુત્રી સ્ત્રી કુટુંબ મકાન દૂર હૈ, દેહ ધનાદિક પરદ્રવ્ય મેં, આહા હા અપના દ્રવ્ય જો જ્ઞાયક સ્વરૂપ હૈ ઉસકી ઉપેક્ષા કરકે અર્થાત ઉસકા આદર છોડ કર, આહા હા સ્વરૂપ કી અરુચિ વહી ક્રોધ હૈ, અપના સ્વભાવ કી અરુચિ વહી ક્રોધ હૈ, આત્મા કે પ્રતિ ક્રોધ હૈ, સમજ મેં આયા, દ્વેષ અરોચક ભાવ, અરુચિ અને ભગવાન પૂર્ણાનંદ કે નાથ કી અરુચિ વહી ક્રોધ હૈ, પરમે પ્રેમ હૈ વહી રાગ હૈ, આહા હા સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ, મેરા પૈસા મહિને દાન દિયા, મહિને અભી 10 લાખ દિયે, ફલાના દિયા, મોરબી મેં બહુત લોગ મર ગયે ના, મોરબી પાણી કી બાઢ મેં બહુત લોગ મરે, તો એક આદમી ને 5 લાખ દિયે, લેકિન 5 લાખ રૂપિયા તેરા કહાં સે હો ગયા, વો તો જડ કી અવસ્થા હૈ, વો જડ સ્વરૂપ હૈ, પ્રશ્નકાર પૂછતે હૈ પૈસે દેને યા નહીં દેને, ક્યોંકિ યે જબ એસી બાત આતી હૈ તો લોગોં કે પ્રશ્ન એસે હોતે, ફિર કરના કે નહીં કરના, પુત્ર તેરા નહીં હૈ તો ઉનકો બડા કરના કે નહીં કરના, ઉનકો ખાના પીના ખિલાના કે નહીં ખિલાના, સમાધાન દેના નહીં દેના લેન દેન કી ચીજ હી આત્મા મેં કહાં હૈ, દેના લેના આત્મા મેં હૈ હી કહાં, જડ અપના હૈ હી નહીં તો જડ લેને દેને કી બાત હી કહાં હૈ, ક્યા કહેતે હૈ, જડ તેરા હોતા તો તું કિસી કો દે સકતા યા લે સકતા, તો તેરે મેં હૈ હી નહીં જડ, તું તો ચેતન હૈ, તો તું જડ કહાં સે કિસી કો દેગા, ઉસમે મમતા કમ હો તો પુણ્ય હૈ, રાગ કમ કરકે મેં ઇસમે 5 લાખ દેતા હું તો વો પુણ્ય હૈ, લક્ષ્મી દેને સે પુણ્ય નહીં હોતા, ક્યા કહા, લક્ષ્મી દેને સે પુણ્ય નહીં હોતા, અપના રાગ મંદ કિયા ઉસસે પુણ્ય હૈ, લેકિન ધર્મ નહીં, વો ભી સમજ લેના, તો 5 લાખ દેને વાલા જ્યાદા પુણ્યવાન કે 10 લાખ દેને વાલા, એ મમત્વ જીતના કમ કિયા ઉસને, રાગ મંદ કિયા ને, એક મુમુક્ષુ આને વાલે હૈ ને, ઉન્હોને બેંગલોર મંદિર બનાને મેં 8 લાખ દિયે હૈ, બેંગલોર મેં 15 લાખ કા મંદિર બનાયા, ઉસમે 8 લાખ ઉન્હોને દિયે થે, 4 લાખ દૂસરે ને દિયે થે, હમને તો કહા થા કે આપકે 8 લાખ ઓર 4 લાખ પૈસા તુમ્હારા નહીં થા, તુમ્હારી મમતા થી ઉસે રાગ મંદ કિયા હો તો પુણ્ય હૈ, ધર્મ નહીં, 1 કરોડ દે દો તો ભી ધર્મ નહીં, પ્રશ્નકાર ને કુછ પૂછા, સબ તો કહાં દે, આહા હા વાસ્તવ મેં તો એક બાર કહા થા ભાઈ કે 10,000 કી પૂંજી હો લેકિન ધર્મી જો હૈ અપની દૃષ્ટિ ગાયક પર પડી હૈ ઉસે રાગ ઘટાના હૈ, 10,000 કી પૂંજી હો લાખ રખે તો ભી અંદર ત્યાગ હૈ, ક્યા કહા સમજે, 10,000 કી પૂંજી હૈ लेकिन दृष्टि समय दर्शन है, तो राग कम करना है तो उसने उतना राग कम किया है। पूंजी भले 10,000 है लेकिन राग कम करे, समझ में आया? और जिसे मर्यादा ही नहीं है इतना रखना कि नहीं, उसे तो तीव्र राग है, अज्ञान है। आहा हा, समझ में आया? समय दृष्टि जीव लक्ष्मी को अपना मानते नहीं, राग को भी अपना मानते नहीं। मंदिर के लिए कोई आते हैं दयादान इत्यादि में प्रचार के लिए, 5 लाख 10 लाख दे, उसमें राग मंद करे तो पुण्य है। भले उसकी मर्यादा 5 लाख की हो, मुड़ी 2 लाख की हो, पर मर्यादा 5 लाख पर न देना, 5 लाख पर न लेना, तो उसने इतना त्याग किया ना। अज्ञानी देने वाला हो लेकिन लक्ष्मी कितनी रखनी है, उसकी मर्यादा नहीं हो तो उसे त्याग है नहीं। ये समझ में आई बात? यानी भले उसके पास अभी ज़्यादा नहीं है, पर उसने मर्यादा बांधी कि मैं इसके ऊपर नहीं रखूँगा। 5 लाख की, भले उसके पास 10,000 है, परंतु उसने 5 लाख की मर्यादा रखी कि इससे बढ़ जाए तो वो तो नहीं रखेगा, दान आदि दे देगा, इस तरह से। इसको कहते हैं मर्यादा बांध लेना। अभी पैसे में तो मर्यादा वैसे भी नहीं बांध सकते, क्योंकि सोना भी ना है तो उसके तो चढ़ जाएगी ना भाव। तो सोने की मर्यादा करेगी, वस्त्रों की, ऐसी पद्धति है। पद्धति यानी वो राग मंद हो तो केवल वो बाह्य दिखाने के लिए या मैं इतना त्याग कर रहा हूँ इसके ऐसी मान्यता के साथ की बात नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि शब्द बताया, यानी उसके ऐसे सहज परिणाम आते हैं कि वो तो उसकी मर्यादा बांध देता है। वो आता है ना, भागचंद जी का ही आता है ना कवि भागचंद जी, वो तो टोकरी लेके जाते थे, वो तो सब्जी वगैरह बेचते थे, हाँ, माला बस 100 रुपये की थी, 100 रुपये का हो गया धंधा तो बंद करके घर में आ जाते थे। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान आत्मा चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ परमेश्वर भगवत स्वरूप विराजता है, उसकी ओर तो दृष्टि नहीं, उसकी उपेक्षा है। सच्चिदानंद प्रभु की उपेक्षा करके परद्रव्य मैं हूँ और वह मेरा है, ऐसा मिथ्यात्व भाव उत्पन्न करता है। हाँ, समझ में आया? इस प्रकार आत्मीयता से, आत्मीयता ने निज रूप से देह धनादिक परद्रव्य में ममत्व नहीं छोड़ता। हाँ, अंतर में अपने स्वभाव को छोड़कर परद्रव्य की ममता, मेरी चीज है, मैं यह हूँ, स्त्री मैं हूँ, लड़का मैं हूँ, देखो मेरे शरीर का दिखाव है, वैसा पुत्र हुआ है, शरीर में पिताजी की शिकल आती है ना, ये शकल कहते हैं, शिकल आती आवे छे, तो कहे यह मैं हूँ। अरे भगवान, वहाँ तू कहाँ आया, वह चीज़ तेरी कहाँ आई, तू वहाँ कहाँ आया, वह चीज़ तेरे में कहाँ आई। सूक्ष्म बात है भाई, आहा, देह धनादिक है ना, आदिक है ना, आदि अर्थात वाणी मौन स्त्री कुटुंब मकान सब लेना। रुकेंगे अभी, यहाँ हो गए ना, समय हो गया। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नन सदा देत हो। जय।